ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशम् श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे अलवरों का जो गुणगान है उसके बारे में। तो जो अलवराज है जनरली ये जो चार संप्रदाय हैं उसमें जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय की जो प्रमुख आचार्य हैं वो है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी भगवान से ज्ञान प्राप्त करती है और वही ज्ञान आगे चलकर उस परंपरा में प्रदान करती है। और उस संप्रदाय में जो प्रमुख फाउंडर आचार्य आते हैं, उस संप्रदाय के फाउंडर आचार्य जिनको कहते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी के बाद सीधा रामानुजाचार्य अवतरित हुए, बल्कि रामानुजाचार्य ये प्रमुख आचार्य इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये जो श्री संप्रदाय है उसको पुनः विशेष रूप से स्थापित किया, उसकी शिक्षाएं आदि को। और इसी कारण से जनमानस में सबसे अधिक फेमस है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने उस संप्रदाय के सिद्धांत की स्थापना की थी, और केवल स्थापना ही नहीं की बल्कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और जो जैनिज हैं, बुद्धिस्ट हैं, मायावादीज हैं, उनको भी वैष्णव बनाया था। तो मतलब वैष्णवों का जो प्रमुख अड्डा है वो दक्षिण भारत है, जहाँ और विशेष रूप से ये जो आचार्य हैं मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने अर्च विग्रह का पूजन, मर्यादा का किस प्रकार से पालन करना चाहिए और सदाचार आदि का ज्ञान सबको प्रदान किया। तो किसी को ये नहीं होना चाहिए कि रामानुजाचार्य ही उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। उनसे पहले भी कई आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य से पहले। रामानुजाचार्य अपने गुरु के रूप में यमुनाचार्य को देखते थे। इसे यमुनाचार्य, उनका बहुत प्रमुख स्थान है श्री संप्रदाय में। और यमुनाचार्य के जो एक प्रकार से गुरु तुल्य थे वो थे नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि। तो वास्तव में इस श्री संप्रदाय के जो रियल परंपरा है एक प्रकार से नाथ मुनि से एक प्रकार से शुरू हो रही है, और नाथ मुनि से पहले भी इस श्री संप्रदाय में 12 आचार्य हुए थे जिनके बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो 12 आचार्य थे उनको 12 अलवर कहते हैं या 12 अलवराज। और ये कब प्रकट हुए थे? कुछ अलवर ने जन्म ग्रहण किया था द्वापर के अंत में, और कुछ अलवरों ने जन्म ग्रहण किया था कलयुग की शुरुआत में, मतलब द्वापर के आखिरी 100 वर्ष होंगे शायद या कुछ, तब ये कुछ अलवर जन्म लिए, और कुछ अलवरों ने जन्म लिया द्वापर के शुरुआत में, कलयुगा के शुरुआत में, बिल्कुल अर्ली डेज में कलयुगा के। तो ये जो 12 अलवर थे ये कोई सर्वसाधारण भक्त नहीं थे। दो प्रकार के जीव हैं, एक है बद्ध जीव और दूसरा कौन सा है? नित्य मुक्त। एक तो नित्य बद्ध और दूसरा है नित्य मुक्त। तो श्री संप्रदाय में जो नित्य मुक्त जीव है उसको कहते हैं नित्य सूरी। क्या कहते हैं? नित्य सूरी। जैसे हम नित्य मुक्त कहते हैं, तो नित्य सूरी का मतलब है कि वो जो भक्त है वो भगवान के धाम से भगवान के द्वारा नियोजित विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। जैसे हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि जितने भी ये गोस्वामीज हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो महान महान पार्षद हैं, ये सारे नित्य मुक्त जीव हैं, और वो इस संसार में आते हैं विशेष कार्य करने के लिए। जैसे रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे जो भक्त हैं वो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, और ये 12 अलवर ऐसे नहीं कि एक ही समय ये प्रकट हो गए, नहीं, ये अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में ये 12 अलवर अवतरित हुए थे, और वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। ये उनकी एक विशेषता थी, उनमें से शायद कुछ ही 2-3 ही होंगे जो एक दूसरे को जानते थे, अदरवाइज कोई किसी को नहीं जानता था। और ये अलवरों का हृदय की ऐसी स्थिति थी जैसे वो विग्रह को देखते थे तो उनका जो प्रेम है हृदय से ओवरफ्लो होता था। जैसे हम प्रसाद को देखते हैं तो हमारा प्रेम कुछ ऐसा ओवरफ्लो हो जाता है, तो वैसे ही ये जो अलवर थे जैसे विग्रह को देखेंगे, हम विग्रह को देखते सोचते अरे प्रणाम करना पड़ेगा, भक्त को देखते तो टेंशन आता है कि अरे प्रणाम करना पड़ेगा, है ना, ओवरफ्लो नहीं होता। तो लेकिन यहाँ इन अलवरों का जो प्रेम इतना उनके हृदय में था कि विग्रह को देखने मात्र से उनका प्रेम ओवरफ्लो होता था। और प्रेम ओवरफ्लो का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि निठल्य होकर एक स्थान में बैठ जाना, नहीं, या सो जाना, अभी मैं बहुत प्रेम की दशा में हूँ, प्रभु जी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। ओवरफ्लो का मतलब है उसकी जिह्वा कृष्ण का सतत गुणगान करती है, उसको रोक नहीं सकते आप। जैसे एक डिवोटी लेडी थी गौड़िया संप्रदाय में, उसका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। तो एक बंगाल के महान एक भक्त थे जो इतने स्कॉलर थे, इतने बड़े बड़े प्रवचन देते थे राधा कुंड में, और एक दिन ये कृष्ण प्रिया ठाकुरानी का प्रेम इतना था कृष्ण के लिए कि ये कृष्ण का नाम लेने से वो अपने आप को रोक नहीं सकती थी। उसकी जिह्वा सदैव बोलती थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी जीव हमेशा हरे नाम निकलता था 24 आवर्स, मतलब उसको हरे नाम को रोकने के लिए अपनी जीव को दांत में पकड़ना पड़ता था। ऐसे नहीं कि ये मैं कुछ हजारों साल पहली बात बता रहा हूँ, ये अभी 350 साल पहले की डिवोटी थी कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, जो राधा कुंड में निवास करती थी, बंगाल से थी। और ये जो कविराज जो एक थे डिवोटी, जो इतना बड़े बड़े प्रवचन देते थे, बहुत स्कॉलरली थे, एक दिन वो प्रवचन दे रहे थे तो ये आके बैठ गई प्रवचन में, भागवत कथा में पीछे, और लेकिन वो केवस का कोई दोष नहीं है। वो बैठी तो अपने आप को रोक नहीं पाती थी, उसकी जीभ बोला करती थी हरे कृष्णा कंटिन्यूअसली थी। इनको गुस्सा आया मेरे प्रवचन में इतना ये कर रही है, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही हो, उनको डांटा वहां से ही, और वो एक अपराध हो गया उसके प्रति उनका, जिसके कारण वो जो इतने बड़े स्कॉलरली डिवोटी थे या बहुत बड़े थे उनको कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 कहाँ थे हम क्या नाम था उनका कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। तो मैं कभी कभी मैं जब कहाँ घुस जाता हूँ तो मैं पीछे याद नहीं रहता कहाँ से मैं टन लिया, तो मुझे याद कीजिए। तो हम वहाँ थे कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। तो जो कृष्ण प्रिया ठाकुरानी का जीवा कभी रुकता नहीं था और उन्होंने उनको डांट दिया, जिनके कारण उनको उस अपराध का भागी होना पड़ा और जिसके कारण परमानेंटली उनका जो भक्ति है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो वैसे ही है, इसको कहते ओवरफ्लो होना। क्या कहते? ओवरफ्लो होना। तो चैतन्य महाप्रभु को भी कहा जाता है औदार्य अवतार है, औदार्य अवतार। तो औदार्य का मतलब क्या है? दो चीजें हैं कृष्ण लीला में, एक है औदार्य और दूसरा है माधुर्य। क्या है? औदार्य और माधुर्य। कृष्ण की लीला माधुर्य मीन्स मधुर है, स्वीट है, हनी से भरी पड़ी है, और दूसरा है औदार्य। औदार्य मीन्स जिसमें वो हनी या मधुरता जब बाहर टपकने लगती है, गिरने लगती है, तो उसको औदार्य कहते हैं। तो वैसे ही कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु है, उनका जो दया है, करुणा सिंधु, कृष्ण को क्या कहते हैं? हे कृष्णा करुणा सिंधु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे परे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु भी है, लेकिन वो सिंधु जब बाहर अपनी मर्यादा तोड़ के बाहर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु। जब समंदर मर्यादा तोड़ता है, मतलब दया सब जगह तक पहुंचाता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार से ये जो 12 अलवर थे, ये विग्रह को देखने मात्र से उनकी जीवा कृष्ण का स्तुति से भरी रहती थी। और वास्तव में कहते हैं कि हमारा जो जीवा है वह हमेशा भगवान और भक्तों के प्रशंसा या स्तुति से भरी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवा सदैव भगवान की स्तुतियों से, स्तोत्रों से, प्रार्थनाओं से भरी रहती है, वो व्यक्ति वास्तव में ये है देवताओं के द्वारा पूजनीय है। देवतागण उनकी पूजा करते हैं, महर्षिगण उनको रेस्पेक्ट आदि देते हैं। तो ये जो 12 अलवर हैं, ये कब आए थे? जब कृष्णा इस जगत को छोड़कर चले गए थे। कहते ना कृष्ण सुधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा, कृष्ण इस जगत से चले गए धर्म ज्ञान आदि को लेकर। तो फिर उसी धर्म आदि की स्थापना करने के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो धर्म की स्थापना केवल दो लोग कर सकते हैं, एक है साक्षात भगवान कर सकते हैं और दूसरा है धर्म की स्थापना करने का अधिकार उनके भक्त के पास है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। धर्म की स्थापना डिवोटी करता है अपने आचरण के द्वारा, और भगवान भी धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान डिसअपियर होते हैं तो कृष्ण ये भक्तों को भेजते हैं कि जाओ धर्म की पुनः स्थापना करो। और ये कब आए थे? जब परीक्षित महाराज को अभी अभी शाप मिला था, परीक्षित महाराज को शाप मिला था उस ब्राह्मण के द्वारा, और तो ब्राह्मण का पतन ही कलयुग की क्या है? शुरुआत है। ब्राह्मण अपने पोजीशन से गिर जाता है, अपने गुणों से, तो वास्तव में वो कलयुग की शुरुआत हो जाती है। तो ब्राह्मण को समाज का सर कहा गया है। सर खराब तो क्या है? सब खराब। दिमाग ठीक ठीक नहीं है तो फिर बाकी पूरा शरीर अस्वस्थ रहता है। तो ब्राह्मण समाज का सर है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं ये जो आंदोलन बनाया हूँ ये ब्राह्मण बनाने के लिए बनाया है। किसके लिए? ब्राह्मण बनाने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद को कोई किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने क्या चमत्कार, आप कुछ चमत्कार दिखाइए, आप इतने बड़े साधु हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया, लेकिन एक चमत्कार मैंने जरूर किया है। जो म्लेच्छ और यवन आदि है उनको मैंने क्या बना दिया है? ब्राह्मण बना दिया है। ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ब्राह्मण कलयुग में खत्म होते जा रहे हैं और जिसके कारण पुनः इस कल्चर की स्थापना करने के लिए भगवान भक्तों को भेजते हैं। ये जो अलवर है ये कोई ब्राह्मण आदि नहीं थे, सारे अलवर। हाँ, तो इन अलवरों का वर्णन ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद ने अपने किताबों में नहीं किया। भागवतम का 11वां स्कंद पढ़ते हैं या कई तात्पर्यों में पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभुपाद इन ब्राह्मणों का, इन अलवरों का वर्णन करते हैं। विशेष रूप से 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 38 और 40 में इन अलवरों का वर्णन आता है भागवतम में, जिसमें राजा निमि और जो नव योगेंद्राज है उनमें से एक है कर भजन मुनि, तो उनके बीच के संवाद में इसका वर्णन आता है। उसमें कहते हैं, कृतादेशो प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलो भविष्यन्ति नारायण परायणा। मतलब कलयुगा में इस शुरुआत में ये डिवोटीज आएंगे जो कैसे होंगे? नारायण परायणा, नारायण के प्रति उनका अनुराग होगा। और वो कहते हैं, कच्चित् चिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासा मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव मलाशया। तो इस द्रविड देश में ये भक्त आएंगे जो कैसे होंगे? वासुदेव मलाशया, अमल आशा। उनकी आशा कैसी होगी? अमल आशा। अमल आशा मतलब जिसमें कोई भौतिकता का लेश नहीं होगा, शुद्ध उनकी डिजायर्स होंगी। अमल आशा मीन्स शुद्ध भक्त। अमल आशा का एक ये भी अर्थ है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अलवरों से प्रेम रखते थे, जिनके कारण जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो जब 15 दिन के लिए जगन्नाथ के दर्शन बंद होते थे तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ दौड़ के जाते थे? अलारनाथ में जाते थे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, अलारनाथ किसके नाथ है? अलवरों के नाथ है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते थे दौड़ते हुए। तो प्रभुपाद ने भी इन अलवरों के बारे में वर्णन किया है। तो इन अलवरों के बारे में जब हम जानते हैं तो जिनके बारे में जानने मात्र से हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है या भगवान के प्रति एक विशेष प्रकार का अनुराग उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि अलवरों की खासियत है वो भक्ति के अलावा कोई और चीज जानते नहीं है। ये अलवरों की विशेषता है और उनका लाइफ से हमें प्रेरणा मिलती है भगवत भक्ति के लिए। तो भक्ति इन भक्तों के हृदय में निवास करती है, इन महान महान वैष्णवों के हृदय में। तो जो तो भक्तों का हृदय जानना है तो क्या करना होगा? उनके द्वारा सुनना होगा, उनकी वाणी के द्वारा उनका जो हृदय है बाहर प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं धर्मश तत्वम निहितम गुहायाम, कि धर्म का जो सार है वो भक्त का हृदय है। क्योंकि धर्म के सार को आप शास्त्रों के द्वारा भी नहीं जान सकते, तो शास्त्रों के सार को, धर्म के सार को जानना है तो भक्त के हृदय को जानना होगा। हाँ, क्योंकि धर्म पुस्तकों में नहीं है, वो तो भक्तों के हृदय में है। इसलिए भगवान जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ने अपराध किया तो भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम, मैं साधु के हृदय में निवास करता हूँ, मैं अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। तो इसी कारण से हृदय में सार एसेंस प्रकट होता है भक्त के, और जब ऐसे भक्तों के मुख से भगवान के प्रति प्रेममय गीत निकलते हैं उनके द्वारा रचित, तो वो जो गीत है वो हमारे हृदय पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा क्या करो, आप इन आचार्यों के गीतों को गाओ। कौन कौन से आचार्य? भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब आचार्य, लोचन दास ठाकुर, इन आचार्यों के गीतों को गाओ। तो ये गीत वास्तव में उनका भक्ति ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके द्वारा ये सारे गीत हम प्रकट हो गए हैं। तो प्रभुपाद खुद इन गीतों को गाते थे, तो वैसे ही इन अलवरों ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, कविताएं जिनको कहते हैं सॉन्ग्स। और ये जो उन्होंने, इन अलवरों ने जो लिखा था, ये पहले किसी को पता नहीं था। कभी इतने शुरुआत के दिनों में कहां कोई कौन सा रिकॉर्डिंग था या कौन लिख के रखेगा, तो भक्तों ने केवल उसको याद किया था। कुछ एक बार एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज आए और ये नाथ मुनि किसी एक स्थान में थे जहां ये सौ गीतों को गाया उस ग्रुप के डिवोटी ग्रुप ने। तो इनको लगा ये कहां से आप लोग गा रहे हो, तो नाथ मुनि ने सर्च किया कि ये जो 12 अलवरों ने कई सारी स्तुतियां की हैं और वो सब अभी क्या है, अप्रकट है, मतलब धीरे धीरे नाश हो गई है। तो नाथ मुनि ने विशेष रूप से इन अलवरों के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको प्रकट कराया। किनके द्वारा? एक अलवर थे जिनका नाम था नम्मा अलवर। क्या नाम था? नम्मा अलवर के द्वारा, क्योंकि लोग भूल गए थे, और यदि ये कंपाइल नहीं करते, संग्रहित नहीं करते, तो लोग भूल जाते परमानेंटली। तो इसलिए उन्होंने नम्मा अलवर की कृपा से इन सारे बाकी अलवरों के सॉन्ग को कंपाइल किया और उसको फिर नाम पड़ा नालाइर दिव्य प्रबंधम। क्या नाम पड़ा? हाँ, प्रबंधम मीन्स संग्रह करना या प्रकर्षेण बदनांति, कि जिनको पकड़ा एक स्थान में, जैसे स्कैटर्ड, अलग अलग स्कैटर्ड सॉन्ग्स होते हैं ना, उसको एक जगह डाल देना। जैसे वैष्णव पदावली है, वो इधर उधर के सॉन्ग्स हैं, लेकिन उसको एक जगह डाल दिया। तो वैसे ही इन्होंने भी इन आचार्यों के सॉन्ग्स को एक स्थान में डाला, तो उसका नाम पड़ा नालायर दिव्य प्रबंधम। नालायर मीन्स 4000 पंक्तियां। हाँ, तो ये 4000 पंक्तियों का ये ग्रंथ है जिसको कहते हैं द्रविड़ वेद। क्या कहते हैं? द्रविड़ वेद है या तमिल वेद है। कोई व्यक्ति उसका अध्ययन करता है तो उसको कोई और चीज पढ़ने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो गीत है जो इन आचार्यों के द्वारा, इन अलवरों के द्वारा दिए हैं, ये बहुत मूल्यवान दिव्य कविताएं हैं या दिव्य पंक्तियां हैं। और जो उन्होंने गाए थे, किसके सामने गाए थे? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, डीटीज के सामने गाए थे, विशेष विशेष जो विग्रहों के सामने गाए थे, जिनके कारण उन स्थानों को दिव्य देशम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्य देशम। तो दिव्य देशम समझ में आ गए आपको? तो कहते हैं कि जब आप उस स्थान में जाओगे, इन दिव्य देशम में जाओगे, तो आपको उस अलवर के मूड को समझना होगा और उन्होंने उस विग्रह के लिए गाए हुए गीतों के भाव को या एटीट्यूड को अपने हृदय में धारण करके भगवान को अप्रोच करना होगा, तो आपका परफेक्शन है। ये एक विशेषता है, उस सॉन्ग के मूड के अनुसार भगवान का या विग्रह का दर्शन करें। तो ये क्योंकि उनके जो गीत है इन महान भक्तों के, वो तीन गुणों से परे हैं। इस संसार में सर्वसाधारण व्यक्ति जो भी लिखता है वो तीन गुणों के द्वारा क्या है, बंधन में है, और वो सॉन्ग्स भी, उनके शब्द भी, और वो व्यक्ति भी। लेकिन जब शुद्ध भक्त जो तीन गुणों से परे हैं, उसके मुख से भगवान की जो स्तुतियां सॉन्ग्स आदि निकलते हैं, वो भी भौतिक तीन गुणों से परे हैं। इसी कारण से ये जो जहां भगवान का गुणगान होता है वो वैकुंठ के समान है। दिव्य देशम है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरे टेम्पल्स क्या है, वैकुंठा है। तो वैसे देखा जाए प्रभुपाद ने तो हर जगह भगवान की स्तुति की है या कर रहे हैं, तो प्रभुपाद के टेम्पल्स भी क्या कहलाए जा सकते हैं, दिव्य देशम है। हाँ, प्रभुपाद रोज ही अलग अलग विग्रहों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हम जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ दिव्य नजर नहीं आता। आता है क्या दिव्य? किसको आया दिव्य नजर आज तक? हमें तो कोई दिव्य नजर नहीं आता जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिरों में आदि। तो इसलिए जब विग्रह का दर्शन करते हैं तो हम अपनी आंखों से करने का प्रयास ना करें। किसके आंखों से देखना है? एक उस आचार्यों की आंखों से, उन अलवरों की आंखों से। हाँ, जैसे चश्मा है ना, तो वैसे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन चश्मे के द्वारा हम देखते हैं तो सही रूप से देख पाते हैं। इसलिए जो डिवोटीज है, अलवराज है, उनकी टीचिंग्स है, उनकी स्तुतियां हैं, वो चश्मे के समान है। उसको धारण करो अपने आंखों में और फिर आप देखो पूर्ण रूप से, अलग रूप से आप देख सकोगे। हाँ, इन विग्रहों को, टेम्पल्स को, आचार्यों को, फेस्टिविटीज को। हाँ, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमेशा जानना चाहिए भगवान के बारे में, डीटीज के बारे में, भक्तों के बारे में, आचार्यों के बारे में, धाम के बारे में। तो जितना जितना हम जानते हैं उतना उतना हम अपने आप को क्लोज महसूस करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो हम बहुत लगता है कि हम बहुत क्लोज हैं उससे, तो वैसे ही है। इसलिए तो आचार्य प्रभुपाद या आचार्यों ने ग्रंथ दिए हैं, बुक्स दिए हैं कि जिनके द्वारा हम जानते हैं, जितना जानेंगे उतना हम भगवान के नजदीक कहलाएंगे। जब प्रभुपाद तिरुपति आए थे तो आंध्रा में एक जगह प्रभुपाद रुके तो एक टेम्पल था छोटा सा। प्रभुपाद ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, ये तो कोई इम्पोर्टेंट टेम्पल नहीं है स्वामी जी, यहाँ कोई रुकता नहीं है, आप क्यों यहाँ रुके हो? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये क्या है, पावरफुल विग्रह है। हाँ, तो अभी कोई व्यक्ति जाएगा या ड्राइवर आदि, उसको तो पता नहीं चल रहा था ये डिटीज बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन कौन देख सकता है, केवल जो महान भक्त है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि बहुत रेयर लोग यहाँ रुकते हैं इस विग्रह का दर्शन करने के लिए, और उनमें से हम भी एक है। तो इसलिए कृष्ण को देखना है, हम अपने मूड से उनको देख नहीं सकते या अनुभव नहीं कर सकते। हमारा मूड हमेशा क्या रहता है? भौतिक मूड रहता है, मटेरियल मूड, जो हमेशा ऊपर नीचे होता है। मूडी डिवोटीज कई बार होते हैं ना, कुछ डिवोटीज कैसे होते हैं, मूडी डिवोटीज। तो कृष्ण का मूड उनके भक्त देख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो विग्रह चाहते हैं कि स्पेशल लोग यहाँ विजिट करें, इसलिए कोई ज्यादा लोग यहाँ रुकते नहीं है। तो ये दिव्य दृष्टि चाहिए हमें, दिव्य प्रबंधम को समझने के लिए, दिव्य देशम को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो दिव्य दृष्टि कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? दिव्य दृष्टि आती है दो प्रकार से, विशेष रूप से दो प्रकार से। मीन्स एक तो दिव्य दृष्टि डायरेक्ट कृष्णा दे देते हैं अपने भक्त को, जैसे अर्जुन को दे दिया है ना अपना विश्वरूप दिखाने के लिए। ददामि ते दिव्य चक्षुम, हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे इस विराट रूप को देख सकते हो। और दूसरा दिव्य चक्षु कौन दे सकते हैं हमें? ऐसे कृष्ण के प्रेमी भक्त जिनको कृष्ण से वास्तव में प्रेम है, कृष्ण के क्लोज डिवोटीज, अंतरंग पार्षद। तो ऐसे जैसे व्यास देव ने किसको दिव्य दृष्टि दी थी? संजय को। संजय दिल्ली में देखकर लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, कहाँ का? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का। तो वैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी अपने एक शिष्य को दिव्य दृष्टि दी थी। जब जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, अरे जिस युग में रह रहे हो या जिस राज्य में रह रहे हो उसी राजा का गुणगान करना चाहिए। तो मतलब द्वापर युग में कृष्ण थे तो द्वापर युग में कृष्ण का गुणगान करे तो अच्छा है। लेकिन जब आप यहाँ हो, कलियुगा में हो, तो कलियुगा के राजा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कलियुगा के राजा है, तो जिस राजा के राज्य में रह रहे हो उसी राजा का गुण गाना चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने शिष्य को कहा, उस शिष्य का नाम था या पर्सनल जो सर्वेंट था, सेवक था, उसका नाम था बिहारी। तो बिहारी को कहा, बिहारी जरा चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाओ। तो बिहारी कहता है, गुरुदेव मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो कहते, बुक उठाओ। तो उन्होंने बुक उठाया बिहारी ने, चैतन्य चरितामृत का, और वो पढ़ने कहा कि शुरू करो। उसको तो सारे अक्षर एक बराबर नजर आ रहे थे, तो लेकिन जैसे इन्होंने आदेश दिया और देखा कि हर लाइन, और ऐसे पढ़ रहा था जैसे कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो। हाँ, तो इसको कहते दिव्य चक्षु। हाँ, चक्षु दाना दिल जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो ये चक्षु दान हमें चाहिए। कौन सा दान चाहिए? चक्षु दान, आंखें। तो आंखें कौन सी? दिव्य आंखें। तो ऐसे इन 12 अलवरों के बारे में हम सुनते हैं, दर्शन करते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आंखें दिव्य होने लग सकती हैं, या हम थोड़ा सा हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके माध्यम से। तो ऐसे 12 अलवर कौन कौन थे, मैं उनके नाम अभी गिनाने जा रहा हूँ आपको, अब ध्यान से लिखना है। हाँ, और ये आपके लिए एक्सरसाइज है पूरी यात्रा में, इन 12 अलवरों का नाम याद रखना है। और ये 12 अलवर भगवान की लीला में कौन कौन थे, या भगवान के कौन, ये 12 अलवर विशेष रूप से भगवान के शस्त्र आश्र है। ये शस्त्र आश्र ये जगत में आते हैं, या भगवान ने जो जो धारण किया अपने शरीर में वो ये जगत में प्रकट होता है और 12 अलवरों के रूप में जन्म ग्रहण करता है। तो इन अलवरों का सीक्वेंस है कि इसका नंबर एक है तो एक ही नंबर रहेगा, ऐसे नहीं कि आगे पीछे नहीं करना है। तो पहले अलवर है जिनका नाम है पोई गई अलवर। पोई गई, पोई गई, पोई गई अलवर। तो लिख रहे हैं आप लोग, पोई गई अलवर। तो इन अलवरों ने पोई गई अलवर, ये भगवान के शंख हैं। भगवान के हाथ में कौन सा शंख होता है? पांच जन्य शंख। पोई गई अलवर इज अ पांच जन्य शंख। दूसरे अलवर है भूतद अलवर। कौन से अलवर? भूतद अलवर, जो भगवान की गदा के अवतार हैं। गदा कौमुद की गदा है, कृष्ण के गदा का नाम क्या है? कौमुदकी। कौमुदकी गदा इस वर्ल्ड में अपीयर होती है। और तीसरे है पेय अलवर। पेय, पेय होता है ना ड्रिंक, पेय पेय, तो उसको पेय, पेय अलवर, जो भगवान की तलवार है। कौन सी तलवार है? कृष्ण के तलवार का नाम क्या है? कौन बता सकता है? नंदक, नंदक, नंदक तलवार। और चौथे अलवर है तिरुमली शाही अलवर। कौन से अलवर? तिरुमली शाही अलवर। ये सुदर्शन चक्र है, चक्र तलवार, जैसे मैंने पहले कहा था। ये सुदर्शन चक्र ये जगत में अवतरित होते हैं, तो वो तिरुमली शाही अलवर। और पांचवे है नम्मा अलवर। कौन है? नम्मा अलवर, ये सबसे प्रमुख अलवर है नम्मा अलवर। हाँ, जैसे हमारे इसमें बहुत गोस्वामियों में प्रमुख गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, बल्कि उनके सीनियर सनातन गोस्वामी हैं। वैसे ही ये नम्मालवर साक्षात भगवान ही एक प्रकार से अवतरित होते हैं। ये विश्वक्सेन के अवतार है, किसके? विश्वक्सेन। और छठे अलवर है मधुर कवि अलवर, मधुर कवि जो कुमुद गणेश, कुमुद गणेश के अवतार है। सातवें है कुलशेखर अलवर। तो ये जो कुलशेखर अलवर है ये कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि के इनकार्नेशन है। और आठवें है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, फास्ट जा रहा हूं हा? अरे वैसे मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज क्लास में, सुबह से बहुत स्लो बोल रहा हूँ, अभी बातें नहीं प्लीज। तो तुम्हें फिर से बोलो, पोईगे अलवर, भूतद अलवर, पेय अलवर, तिरुमल शय अलवर, नम्म अलवर, मधुर कवि अलवर, और सातवें है कुलशेखर अलवर जो कौन है, और आठवें है पेरिय अलवर, पेरिय पेरिय ये है वैनतेय, वैनतेय गरुड़ का एक नाम है, गरुड़ जी के अवतार है। कौन है? गरुड़ क्या होता। नवे है अंडाल, अंडाल में उनका दूसरा नाम है गोदा देवी। ये बारह अलवरों में एक स्त्री थी और जिनका नाम था अंडाल, अंडाल या गोदा देवी, और ये मेरे फेवरेट अलवर है गोदा देवी। उनका चरित्र बहुत अमेजिंग है, उनके प्रेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। गोदा देवी जो भूदेवी के इनकार्नेशन है, किसके इनकार्नेशन है? भूदेवी साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी का विस्तार। और दसवें है तोंडरादि पूड़ी अलवर, तोंडरादि, तोंडरादि पूड़ी अलवर। स्पेलिंग सही लिख रहे हैं आप लोग? तोंडरादि पूड़ी, तोंडरादि पूड़ी अलवर जो वैजयंती माला के विस्तार, वैजयंती माला। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या अभी कौन सा नंबर है? 11, 11वें अलवर तिरुपन अलवर। आपको नाम लिखने हैं केवल, तिरुपन, वीरप्पन था ना, तिरुपन पप जुड़ा हुआ पा है, तिरुपन। ये श्रीवत्स चिन्ह के इनकार्नेशन, श्रीवत्स भगवान धारण करते ना अपने चेस्ट पर, और सबसे पावरफुल अलवर है एक, उनका चरित्र अमेजिंग है। उनका नाम है तिरुमंगई अलवर। क्या है? तिरुमंगई अलवर। आपका सर दर्द तो नहीं हो रहा है अभी? हाँ, अभी और नाम सुनाऊंगा मैं तो फिर आप तो कहेंगे गुरु जी बंद करो। 12 हो गए, कौन बताएगा 12? ओ सारंग, धनुष, भगवान का धनुष था ना, सारंग कहते हैं, शार्क धनुष, उसको सारंग भी कहते हैं। वो भगवान का वो, तो अभी बताइए 12 अलवराज हो गए। आप जहां भी जाएंगे दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको ये अलवरोंस के विग्रह मिलेंगे, अलवरोंस के भगवान के दर्शन के आज साथ साथ बाहर जो टेंपल्स होते हैं साथ ही इन अलवरों के मंदिर हैं आचार्यों के। कई मंदिरों में सारे अलवरोंस के ऐसे डेटिस लगे होते हैं, 12 अलवर, फिर आपको देखना है कौन से अलवर कौन से हैं, बहुत कठिन है। तो कौन बताएगा सारे 12 अलवरों के नाम, किसने ठीक से लिखा है, मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। ठीक है, चलो माता जी अंदर। डिस्कशन करेंगे शुरू इन अलवरों का। तो थोड़ा सा कठिन है, कुछ अलवरों के बारे में बहुत कम वर्णन है ग्रंथों में और कुछ अलवरों के बारे में कुछ ज्यादा वर्णन है। तो प्रयास करेंगे जितना समझ में आए मुझे भी और आपको भी। तो ये अलवरों के नाम अलग अलग नाम क्यों और कैसे पड़े, या फिर इन अलवरों ने कैसे भगवत भक्ति को प्रकट किया, और हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि इन अलवरों का जन्म और कर्म साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः। तो जिस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त या अलवरों के जन्म कर्म भी क्या है, दिव्य हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा धाम से आए हैं और इसलिए वो अंतरंग पार्षद है भगवान के। श्री संप्रदाय में नित्य मुक्त को क्या कहा जाता है, नित्य सूरी। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं जब तक आप साउथ में हो, दिल्ली जाओगे तो ठीक है, भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आपको यहाँ कोई पूछेगा नहीं मंदिर घुसते समय, आप बताओ 12 अलवरों के नाम, डरना नहीं है। तो हमें जा रहे हैं हम तो हमें जानना चाहिए हाँ इस स्थानों के बारे में भी और इन भक्तों के बारे में। कुछ अलवर हैं जो किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए, जैसे राधा रानी का बर्थ हुआ है वैसे कुछ अलवरों का बर्थ ऐसे अमेजिंगली हुआ है बिना किसी माता पिता के। तो पहले अलवर है जिनका नाम है पोई गई अलवर। क्या है उनका नाम? पोई गई अलवर। तो अभी तो ये इन अलवरों की विशेषता और वस्तुतः इन अलवरों ने एक चीज को तो स्थापित किया है, नारायण क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी, भगवान नारायण। इसलिए श्री संप्रदाय का जो मंत्र है वो है ओम नमो नारायणाय। क्या है? श्री वैष्णवाद इसका चांट करते हैं। तो इन अलग अलग अलवरों ने अलग अलग जो प्रार्थना की वो भगवान के विशेष चीजों से संबंध रखती है। जैसे पहले तीन अलवर हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं में भगवान परम सत्य हैं, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसको उन्होंने स्थापित किया है पहले तीन अलवरों की प्रार्थनाओं में। और जो तिरुमली शाय अलवर हैं, उनका नंबर क्या है? फोर्थ। ठीक है, मैं भी सीक्वेंस में ट्राई कर रहा हूं। तिरुमली शाय अलवर है, उन्होंने ये स्थापित किया है उनके प्रार्थनाओं में कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है भगवान वो सबके अंदर है। और दो अलवरों की विशेषता थी, पेरिय अलवर और अंडाल अलवर। पेरिय का नंबर क्या है? 8 और 9। तो इन्होंने कृष्णा, जैसे बाकी अलवरों ने तो नारायण विष्णु आदि के रूप में उनकी स्तुति आदि की है, लेकिन ये गोदा देवी या अंडाल कृष्णा के प्रति माधुर्य भाव रखती थी और श्री कृष्ण के रूप में अपनी सारी प्रेयर्स, गोदा देवी अंडाल की बहुत सारी प्रेयर्स हैं, मार्गई मास में उसका उच्चारण करते हैं यहाँ विशेष रूप से। तो श्री कृष्ण के लिए विशेष उनकी प्रार्थना संबोधित है। और जो नम्मा अलवर है, उनकी प्रार्थनाओं में जीवात्मा और परमात्मा भगवान को संबोधित किया गया है, जीवात्मा स्वयं को और भगवान को परमात्मा। और कुलशेखर भगवान राम से आसक्त थे और इसलिए उनकी जो प्रेयर्स है वो भगवान राम के प्रति एक प्रकार से समर्पित या संबोधित हैं। और तोंडरादी पोड़ी अलवर और तिरुपन अलवर, इनका नंबर क्या है? 10, 11। 10-11 ना, तो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो संबोधित करती है श्री रंगनाथ को। किसको? रंगनाथ, श्री रंगनाथ, हाँ श्री रंग को। और जो मधुर कवि अलवर हैं, इनकी विशेषता है, इनकी क्या विशेषता है, इन्होंने भगवान के प्रति प्रार्थनाओं का कम ये किया है, लेकिन भगवान से प्रार्थना की है कि आप मुझे पूर्ववर्ती आचार्यों का स्लेव, दास बना दो, गुलाम, बस मैं और किसी चीज की कामना नहीं करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने वही कहा ना, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ये भावना की डिमांड अपने प्रार्थनाओं में है पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति। और जो आखिरी आचार्य हैं, हाँ, उनकी जो प्रेयर्स है वास्तव में वो नारायण को संबोधित करती है, तिरु मंगई अलवर, जो भगवान से बातें किया करते थे। तिरुमंगई अलवर ऐसे अलवर थे, वो सबसे ज्यादा अधिक दिव्य देशम में गए हैं। ऐसे नहीं कि ये सारे अलवर सारे 108 दिव्य देशम में गए, नहीं, ये सारे अलवर 108 दिव्य देशम में नहीं गए, कुछ कुछ स्थानों में गए और उन स्थानों में उन्होंने प्रेयर्स की। तो कुछ लोग 50 स्थान में गए होंगे, कुछ 30 स्थान में, कुछ तो 100 स्थान में, ऐसे स्थानों में उन्होंने प्रेयर्स की है। तो सबसे ज्यादा स्थानों में गए हैं तिरुमंगई अलवर। और तिरुमंगई अलवर जब प्रेयर्स करते थे, कृष्ण उठ के बैठ जाते थे कि भगवान लेटे रहते ना अनंत शेष पर, और कभी कभी तिरुमंगई अलवर जब निकल पड़ते थे तो सुनने के लिए उनकी प्रार्थनाओं को दौड़ के बाहर आ जाते थे, अरे रुको कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे सुनना है, ऐसे भगवान दौड़ते थे उनके पीछे पीछे। तिरुमंगई अलवर की ये विशेषता और इनकी उनकी ये खासियत थी उनके प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में। तो ये जो फर्स्ट आचार्य है पोईगई अलवर, जिनको कहा जाता है श्री वैष्णव संप्रदाय के अग्रदूत, क्या कहते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय के अग्रदूत हैं। ये किसके अवतार है, भगवान लेफ्ट हैंड में रखते हैं हमेशा पंचजन शंख को। और ये सबसे प्रमुख, या सबसे प्रमुख नहीं, सबसे प्रथम, हाँ, ये जो अलवर है, हाँ, तो इनका जो जन्म है कांचीपुरम में हुआ था। कांचीपुरम में एक स्थान है जिसको कहते हैं तिरुवेक्का, क्या कहते हैं, तो आप पूरे तमिलनाडु सब जगह आपको ज्यादातर चीजें शुरू होती है कहाँ से, तिरु से, तिरुअनंतपुरम। हम कौन से ट्रेन में है, त्रिवेंद्रम का दूसरा नाम क्या है, तिरुअनंतपुरम। देखो ये अनंत, तिरु अनंत मतलब तिरु मीन्स व्हाट, लक्ष्मी, अनंत, अनंत जो पद्मनाभ, अनंत के ऊपर जो लेटे हुए लक्ष्मी के पति, वो अनंत पद्मनाभ है। तो इनका जन्म तिरुवेक्का में हुआ था कांचीपुरम में, जहां वेगवती नदी के पास श्रावण महीने में, अक्टूबर नवंबर में। तो पोईगई का मतलब होता है, तमिल ये शब्द है पोईगई, पोईगई मीन्स पॉन्ड, पॉन्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, सरोवर, जलाशय ना, तालाब। तो पोईगई अलवर का जन्म तोंडई नाडु में हुआ था, किसमें हुआ था, तमिलनाडु का दूसरा नाम है, क्या है, तोंडई नाडु, और मलय नाडु एक है केरला में, मलय नाडु हम जा रहे परसों। तो ये तोंडई नाडु, ये जो कांचीपुरम है, ये विशेष सुंदर शहर है, और वहां जो कांचीपुरम शहर है ये दो भागों में बटा हुआ है, हाँ, दो भाग कौन कौन से है, एक है विष्णु कांची और दूसरा है शिव कांची। क्या है दो भाग, विष्णु कांची, शिव कांची, शिव कांची को पेरिया कांची भी कहते हैं। तो अभी ये सरल है, विष्णु कांची मीन्स जहाँ विष्णु के ही विष्णु के मंदिर है बहुत सारे, और शिव कांची मीन्स जहाँ शिव जी के मंदिर। आप जाएंगे कांचीपुरम तो आपको पता चलेगा, इतने विशाल मंदिर है शिव जी के, जगन्नाथपुरी से भी बड़े बड़े मंदिर, इतने सारे शिव जी के, फिर एक एरिया में सारे विष्णु के टेंपल्स हैं। तो वहाँ जो एक टेंपल है जिसका नाम है, ये तिरुवेक्का में एक टेंपल है जिसका नाम है यथोत्तकारी पेरुमल। क्या है नाम? अभी फंस गए। पेरुमल मीन्स विष्णु, भगवान को उस लैंग्वेज में पेरुमल, ये भी शब्द मैं आपको बताना भूल गया, पेरुमल, पेरुमल भगवान को कहते हैं, भगवान विष्णु। तो वहां एक टेंपल है यथोत्तकारी विष्णु, यथोत्तकारी पेरुमल टेंपल, यथोत्तकारी तिरुवेक्का में। और उसके पास ही ये नजदीक पोई गई जो पॉन्ट है, पॉन्ट मीन्स जो तालाब है, उसमें एक सुवर्ण कमल के ऊपर पोई गई अलवर का जन्म हुआ था। इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ा, तालाब में सुवर्ण कमल में उनका जन्म हुआ, इसी कारण से वो तालाब को तमिल ने पोई गई कहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा पोई गई अलवर। इनके और भी नाम है संस्कृत में, सरस या सरोयोगी, क्या कहते हैं इनको, सरोयोगी। सर, सर का मतलब है तालाब जिनसे वो उत्पन्न हुए हैं, या कासार योगी भी कहते हैं उनको। और एक नाम है पद्म मुनि। तो इस प्रकार से पोई गई अलवर का प्राकट्य हुआ था, और पोई गई अलवर ने जो सॉन्ग्स लिखे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, 100 सॉन्ग्स की रचना की है। कितने? 100 सॉन्ग्स। और उनको कहते हैं अंधाती, अंधाती, अंधाती मीन्स कि जो सॉन्ग का आखिरी शब्द है जब दूसरी लाइन शुरू होगी तो वो शब्द क्या बन जाएगा, फर्स्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने सॉन्ग्स बोले हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि वास्तव में पोई गई अलवर की जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो ज्ञान के दीपक के समान है जो मेरे जीवन को गाइड करती है। ऐसा रामानुजाचार्य पोई गई अलवर की प्रशंसा में कहा करते थे। इसलिए पोई गई अलवर को कहते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय का मॉर्निंग स्टार। क्या कहते? संप्रदाय का मॉर्निंग स्टार है पोई गई अलवर। तो वो, उनकी कई सारी शिक्षाएं हैं, उनमें वो कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करना वो इंडेक्स ऑफ भक्ति है। भक्ति का प्रमुख शुरुआत है कि इंद्रियों का निग्रह करना, और भगवान का अनुभूति करना, ये प्रमुख गोल है जीवन का। तो ये 3 अलवरों के बारे में हमें समझना है शुरुआत में, जो फर्स्ट 3 अलवराज है। क्या है पहले 3 अलवर? पोई गई, भूतत, पेय। ये तीनों एक बार मिले थे, और ये तीनों की बहुत विशेषता है। तब ये एक अलवर हो गए। कौन से अलवर हो गए? पोई गई अलवर। तो आप याद करवाऊंगा मैं आपसे बोल बोल के ना। अभी दूसरे अलवर है भूतद अलवर। तो इनका जो प्राकट्य है भूतद अलवर, उनका प्राकट्य हुआ था तिरुकड्डुमलई। कहा हुआ था? तिरुकड्डुमलई, तिरुकड्डल, तिरुकड्डुमलई। एक कौमुद की गदा के इनकार्नेशन है। तो तमिलनाडु को कहते तोंडई नाडु। क्या कहते हैं? जैसे मैंने अभी कहा था। तो इसके शीश सी शोर में एक स्थान है जिसको कहते हैं मामल्लपुरम, या उसको अभी नाम क्या है, महाबलीपुरम। क्या नाम है? बहुत अच्छा स्थान है। दामोदर प्रिया प्रोग्राम गए थे लास्ट ईयर, याद है आपको? तो महाबलीपुरम ये वो स्थल है जहां भगवान, ऐसा कहते हैं कि वामन देव ने, बलि महाराज ने क्या किया था, वहां यज्ञ किया था महाबलीपुरम। जहाँ उन्होंने वो 3 स्टेप भूमि मांगी थी महाबलीपुरम, उस स्थान में इनका प्राकट्य हुआ था। और जहाँ भगवान है विष्णु, जो बहुत फेमस है, जिनका नाम है स्थल शयन पेरुमल। क्या नाम है?
स्थल शयन
पेरुमल। हाँ, जो एक जगह लेटे हुए हैं, शयन स्थल शयन पेरुमल के रूप में है। तो ये जो स्थल शयन पेरुमल, इनका जो जन्म है माधवी फूल से हुआ था। हाँ, तो माधवी फूल को तमिल में कहते हैं कुरुकट्टी। क्या कहते हैं? कुरुकट्टी कहते हैं। तो भूत तलवर का जन्म वहां हुआ था माधवी फ्लावर से। और विशेष रूप से भगवान की कृपा से ही इनको सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जिनके कारण उनका पोषण हुआ था भक्ति का, इसलिए उनको भूत योगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत योगी भी उनको कहा जाता है। भाद्रपद में इनका जन्म हुआ था, और इस संप्रदाय के स्ट्रॉन्ग पिलर, श्री वैष्णव संप्रदाय की क्या कहते हैं इनको, स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे अलवर। आप कहेंगे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है सारे अलवरों का, ठीक है। थर्ड अलवर कौन से है? पेय अलवर। तो पेय अलवर ये मल्यापुर, चेन्नई के पास एक स्थान है एक्चुअली। वहाँ एक जो तालाब था जिसमें लिली फ्लावर, क्या कहते हैं उसको, लिली फ्लावर को हिंदी में भूल गया, कमल पुष्प के समान ही होता है, रेडिश। अब जगन्नाथपुरी जाते हो ना तो रास्ते में कुंड होते हैं कई सारे, उसमें आपको दिखाई देता है। उस फ्लावर को संस्कृत में कहते हैं रक्तोत्पल पुष्प, बहुत कठिन है। रक्तोत्पल पुष्प का मतलब है जो रक्त के समान, वो जो पुष्प है, हाँ, जो कमल पुष्प है। तो वो आदि केशव मंदिर है वहां, उसके पास जो कुंड था उसमें उस पुष्प से इनका जो प्राकट्य है वो हुआ था। और पेय अलवर, इनका नाम पेय अलवर इसलिए भी है कि ये कृष्ण के लिए या कृष्ण में अत्यधिक कृष्ण के विचारों में पागल रहते थे, और इतना अधिक भगवत भक्ति था उनके हृदय में कि भगवान का नाम लेने मात्र से उनके सारे शरीर में प्रेम के विकार ऐसे जागृत हो जाते थे। और इस प्रकार से उनका आचरण था भगवान के प्रति कि जैसे किसी भूत ने ये कर दिया हो, क्या कहते हैं उसको, किसी पकड़ लिया हो, मतलब भूत किसी के ऊपर सवार हो जाता है, व्यक्ति पागल होता है। उसी प्रकार से पेय अलवर कृष्ण रूपी जो भूत है उन्होंने इनको पकड़ा था, और वो पूरी तरह से कृष्ण की नशा में उन्मत्त रहते थे। ये ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं है, इसलिए पेय कहते ना, पियक्कड़ होता है व्यक्ति, वैसे ये पेय है। पेय क्या पिया इन्होंने? कृष्ण प्रेम मदिरा। कौन सी मदिरा? कृष्ण प्रेम की जो मदिरा है इसमें ये उन्मत्त रहते थे। हमें तो भौतिक नशा नचाती रहती है ना, लेकिन यहाँ आनंद के लहरों में हाँ मग्न रहा करते थे इनका। और एक नाम है भ्रांत योगी। क्या नाम है? भ्रांत योगी। इन्होंने 100 से अधिक लिखे हैं गीत भगवान के प्रति हेतु। और इन्होंने एक और अलवर को भक्त बनाया, ये कई अलवर ने और एक अलवर को भक्त बनाया जिनका नाम था तिरुमली शाही अलवर। उनका नंबर क्या है? हा? 4 ना। हाँ, तो तिरुमली शाही अलवर को भक्त बनाया था पेय अलवर ने। तिरुमली शाही अलवर पहले शिवा के पूजक थे, शिवजी के महान सेवक थे। और इनकी खासियत थी इनकी प्रार्थनाओं में कि हर प्रार्थना के आगे वो लक्ष्मी को जोड़ा करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना राधा कृष्ण सीताराम, तो उस प्रकार से सबसे पहले वो ग्लोरीफाई करते थे हाँ लक्ष्मी देवी को मदर, और फिर भगवान का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है उसकी उन्होंने शिक्षा दी कि पहले भगवान की जो लक्ष्मी देवी है उनका हमें स्तुति करना चाहिए जो मदर है, और फिर कृष्ण का अनुराग हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे तीन अलवर अराउंड एक समय में प्रकट हुए थे आगे पीछे। तो लेकिन ये तीन अलवर कभी मिले नहीं, और ये तीन अलवर हमेशा दूर दूर भ्रमण करते थे, ट्रैवल करते थे और अपनी दुनिया में मग्न रहते थे। उनको किसी और का होश नहीं था और पागल की तरह वो सोचते थे कि इस दुनिया में एक सर्वसाधारण जीव भी अपने आप को राजा समझ रहा है और पागल की भांति आनंद प्राप्ति के लिए भ्रमण कर रहा है। तीन तीनों अलवरों को भक्तों के संग के अलावा किसी और का संग अच्छा नहीं लगता था, इसलिए किसी और के संग में रहना मीन्स उनको ऐसे लगता था कि दम घुट रहा है। ऐसे लगता है आपको दम घुट रहा है, ऐसे महसूस होता है? नहीं होता हमें, है ना। तो वैसे ही नालोरिंग की स्थिति थी कि भक्तों के संग के अलावा किसी व्यक्ति से मिलना, उनके एसोसिएशन में रहना उनको लगता था कि दम घुट रहा है। और वो किसी गांव में या शहर में उतना ही रहते जितना वो किसी के संग को सह पाते, अन्यथा उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। तो ये तीनों अलवर एक स्थान में मिलते हैं, वो एक छोटा सा विलेज था जो विष्णु टेंपल है वहां तिरुकोहलूर। क्या स्थान है? तिरुकोहलूर। तिरुकोहलूर ये विष्णु टेंपल है, और वास्तव में भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की योजना से ही एक साथ आते हैं, भगवान की योजना से ही आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो उसके पीछे भगवान का विशेष हाथ है। तो ये तीनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन भ्रमण करते करते एक स्थान में आ गए। जैसे सोचो परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज को नेड़ थे, जब उनको शाप मिला तो जब उनको नेड़ थे तो कौन आए घूमते घूमते? शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी को भगवान ने अरेंज किया था, इसलिए गीता में कृष्ण कहते ईश्वर सर्व भूतानाम, भगवान कहते हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और वो हृदयों से गाइड करते हैं एक दूसरे को। तो वैसे ही जब परीक्षित को नेड़ थे शुकदेव गोस्वामी आ गए। तो वैसे ये तीनों आचार्य एक दिन सुबह सुबह निकल पड़े थे, और निकलते निकलते उस दिन इतनी बारिश आ रही थी, सब जगह बादल छाए हुए थे, तूफान हो रहा था, हवा बह रही थी, और दो दिन से ये लोग घूमते घूमते उनमें से एक एक स्थान में पहुंचते हैं और एक छोटी सी कुटिया को देखते हैं। उनमें से एक जो अलवर है सार योगी, किसका नाम मैंने बोला था? सार योगी, ढूंढिए। सार योगी, कासार योगी, सरो योगी, पोईगे अलवर का नाम है। हाँ, तो ये जब बारिश हो रही थी तो सार योगी ये सब सबसे पहले पहुंचे उस स्थान में। छोटे सा प्लेस था, बहुत ही छोटा सा, जिस कुटिया के अंदर वहां पहुंचे बाहर, तो उनको लगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए इस बारिश तूफान आदि से बचने के लिए। वो भीग गए थे, कपड़े भी फटे जा रहे थे और वो उस कुटिया के बाहर थे और उनके पास जो शॉल आदि थी वो तूफान और बारिश ने उनसे ले ली एक प्रकार से। तो ऐसे सार योगी अंदर जाते हैं भगवान की प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए, उस कॉटेज में, उस झोपड़ी में जाके घुसते हैं और वहां जाकर लेट जाते हैं। लेट जाते मीन्स क्या कहते हैं, लेट जाना मीन्स ऐसे फैल जाना ना, सो जाना, जैसे हम सोते हैं। तो उनको नींद लगने ही वाले थे तो उस स्थान में और एक प्रवासी आ पहुंचता है और वो कहता है कि कौन है अंदर, मैं अंदर आ सकता हूं। तो वो दूसरा प्रवासी कौन था, पोएगई अलवर। कौन थे? नहीं नहीं, पोएगई अलवर ने कहा, पोएगई अंदर अंदर थे पोएगई अलवर। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति लेट सकता है तो दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, इतना छोटा प्लेस था वो। उन्होंने कहा, पोएगई अलवर ने कहा आप अंदर आ सकते हो, यदि एक व्यक्ति यहाँ लेट सकता है तो दो व्यक्ति यहाँ बैठ सकते हैं। तो उनको अंदर बुलाया और वो, और बिल्कुल अंधेरा था, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, इतना अंधकार था, डार्क, कि बस आवाज सुनाई दे रही थी, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था, फेस भी नजर नहीं आ रहा था। और ये फिर पोएगई अलवर आया अंदर। हाँ, पोएगई अलवर पहले से ही थे, फिर कौन से आ गए? हाँ, तो फिर उसके बाद ये दोनों बैठ गए। बैठते ही और एक प्रवासी वहां पहुंचा, वो थे कौन से अलवर थे, भूतद अलवर। उन्होंने कहा क्या और स्पेस है, मतलब आ जाओ अंदर। तो फिर अंदर से आवाज आती है कि दो व्यक्ति बैठ सकते हैं तो तीन व्यक्ति क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये है डिवोटीज का नेचर, है ना। हमें अपने लाइफ में डिवोटीज के लिए क्या रखना चाहिए, स्पेस। तो इन्होंने हमेशा स्पेस था किसके लिए, भक्तों के लिए अपने जीवन में। हाँ, तो अंदर तो अंधेरा था, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो फिर एक दूसरे को उन्होंने सोचा कि पूछ लेते, परिचय पूछ लेते हैं कि कौन क्या है। तो भक्त लोग जैसे आपस में मिलते हैं तो उनका एक गुण है, कृष्ण कहते हैं ना भक्तों का क्वालिटीज गीता में, क्या है गुण, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त आपस में जैसे मिलते हैं तो भगवान के बारे में बात करने लगते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो जैसे ही इन्होंने पूछा एक दूसरे को, तो उसमें जो सरयोगी, सरयोगी किसको बोला गया है, पोएगई अलवर। तो उन्होंने कहा मेरा परिचय क्या है, वो कहते हैं भगवद एष भूतहम अनन्यार्थो चितः परा। उन्होंने कहा मेरा परिचय है कि मैं इस भौतिक जगत से अलग हूं और भगवान का सेवक हूं। ये किसने परिचय दिया, पोएगई अलवर। अभी आपको परिचय पूछे आप कहेंगे मैं इस, मेरी माँ का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मैं इस गांव का हूँ, इस सेक्टर में रहता हूँ। हाँ, सब हम बताएंगे, लेकिन भगवान के साथ हम अपना परिचय नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अपना परिचय इस भौतिक जगत में हमेशा अपने शरीर से रखते हैं। शरीर से परे हम उठ ही नहीं पाते हम मृत्यु के अंत तक। लेकिन यहाँ ये जो सार योगी है, सर योगी, वो कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत से अलग हूँ और वास्तव में हम इस भौतिक जगत के प्राणी नहीं है। इसलिए हाँ, प्रभुपाद कहते ना कि हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं। और दूसरी चीज क्या है, उन्होंने कही कि मैं परम भगवान का क्या हो, सेवक हो। और फिर जो भूत योगी है उनको पूछा तो उन्होंने कहा मेरा परिचय है दासोहम वासुदेवश सर्वलोक महात्मनः, कि मैं किसका दास हूँ, वासुदेव का दास हूँ। हाँ, सर्वलोक महात्मा, सर्वलोकों के वो महान है, सर्वलोकों में जो महान है। फिर जो तीसरे थे, हाँ तीसरे कौन रह गए, पेय, जिनको भ्रांत योगी भी कहते हैं।
सबसे बढ़िया चाहिए
तो वो कहते हैं दासो हम कौशल इंद्रश राम शाह क्लिष्ट कर्मणा। कौशल इंद्र राम है, कहते मैं किसका दास हूँ, भगवान राम का दास हूँ, जिनके कार्य बहुत अद्भुत है, ये अपना परिचय बताते हैं। इस प्रकार से उनका दिव्य वार्तालाप चला और वो बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे और अचानक वहां चौथा व्यक्ति आ जाता है। कौन आ जाता है, कौन आ रहा होगा, हाँ कौन, भगवान आ जाते, कौन आ जाते, हाँ क्यों आते भगवान बताओ, क्योंकि भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान इंतजार करते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे लीला गुण कथा को सुन रहे हैं, भगवान दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। और क्या कहा जाए, ऐसे तीन शुद्ध भक्त यदि भगवान के बारे में चर्चा करे तो वहां भगवान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान आ जाते वहां और तो भगवान ने सोचा अभी जाना पड़ेगा मुझे तीव्रता से। और तब चौथा व्यक्ति जबरदस्ती घुस रहा था अंदर, उसने पूछा नहीं कि मैं अंदर आ रहा हूं जगह है क्या, नहीं मतलब कृष्णा कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो वो घुस रहे थे और अभी बहुत टाइट हो रहा था अंदर जगह, तो वैसे एक व्यक्ति लेट सकता है, दो व्यक्ति बैठ सकते, तीन व्यक्ति खड़े हो सकते, अभी चौथे को कहाँ करेंगे। चौथा इतना शीघ्रता से आया और वो घुस रहा था जबरदस्ती, इतना टाइट हो रहा था, तो पोइगे अलवर ने सोचा कोई भूत तो नहीं आ रहा है हमारे बीच में। तो पोइगे अलवर बोले कि क्या करो, अभी कुछ दिया जलाओ, हम देखते हैं ये चौथा व्यक्ति कौन है, क्या जलाओ, दिया जलाओ जिसके द्वारा तो देखा जाए कि कौन आया हुआ है, और फिर सोचा कैसे दिए को जलाएं। तो उस समय सरयोगी, सरयोगी कौन है, पोए गए अलवर, सरयोगी ने दिया जलाया और वो दिया क्या है, प्रार्थना है, क्या है, प्रार्थना का दिया। और उन्होंने ऐसी प्रार्थना बोली जिसको कहते हैं तिरुवंदादि, क्या कहते हैं, तिरुवंदादि। तो जो ये जो भगवान के भक्त हैं उनको कोई लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते, जैसे हम पूरे नोटबुक लिख के लेके आते हैं, नहीं उनके लिए स्पॉन्टेनियस है, उनकी जो स्तुति है नेचुरल प्रेयर्स है जो उनके हृदय से टूट कर निकल रही है। और कहते हैं कि जैसे तूफान बाहर आता है वैसे भगवान के भक्तों के हृदय से प्रार्थना रूपी तूफान बाहर प्रकट होता है। तो ये तिरुवंदादि एक विशेष स्टाइल है प्रेयर्स की, जिसमें क्या है, तिरु मीन्स व्हाट, तिरु मीन्स क्या, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपत्ति, सौंदर्य, तिरु। और अंदादि मतलब कि एक ही शब्द से उसकी शुरुआत है उस प्रेयर की और उसी शब्द से क्या है, अंत है, इसलिए अंदादि। तो ये जो प्रेयर्स उन्होंने गाई, तो ऐसे 300 प्रेयर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी को दीप बनाता हूं, उनकी प्रार्थना में, और कहते कि समंदर को ऑयल बनाता हूं, किसको ऑयल, समंदर को, और उससे जो लाइट निकलती है वो वास्तव में सूर्य है, क्या है, सूर्य, वो दीप जब जलता है तो वो सूर्य है। और ऐसे उस प्रकाश से ये जो चौथा व्यक्ति घुस रहा है अंदर, इसको क्या करेंगे, हम देख पाएंगे, ऐसा भगवान के प्रति उन्होंने सुंदर प्रार्थना बोली। उन्होंने कहा, फिर कहा कि ये जो भक्ति है ये मेरा दीप है, और भगवान को देखने की जो लालसा या आतुरता मेरे हृदय में है, या उनको जानने की भावना या सेवा करने की जो भावना है, वो घी है। घी क्या है? घी, घी क्या है बताइए? हाँ, आतुरता, ईगरनेस, वो घी है। और हृदय में मेरे जो जल रहा है रुदन हृदय कृष्ण के लिए, वो वास्तव में जो वात है, क्या कहते हैं उसको, दीप को, बत्ती है, बत्ती है। और ऐसे भक्ति के दीपक से मैं क्या करूंगा, नारायण को देखूंगा। तो फिर और वो प्रार्थना करने लगे कि ये दीप अच्छा है, कि मुझे पद्मा रमन, लक्ष्मी का एक नाम है पद्मा, तो उनके जो प्रेमी कृष्ण है, उन्होंने, उनके चरणों ने मुझे पागल बनाया है, और मैं इतना पागल हो गया हूं कि उनके विरह में मेरे आंखों से मूसलाधार वर्षा के समान आंसू बह रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, आनंद से मैं नृत्य कर रहा हूं, और मैं दीप नहीं जला सकता, आप सब भक्तों के दीपक से वो कहते हैं कि मैं भगवान को देखूंगा। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं इन सब ने की, क्या कहते हैं, अलवरों ने की। और फिर वास्तव में तब इन्होंने किसको पकड़ा, उन प्रार्थनाओं के द्वारा कृष्ण को पकड़ा। तो इस प्रकार से ये तीन जो अलवर है उनकी ये विशेषता है कि उनकी प्रार्थनाएं और उनका कृष्ण का जो गुणगान है उनके जीवन में इतना पावरफुल था उनकी स्तुतियां, कि जिसके द्वारा उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ये जो तीन अलवर है उनका वर्णन है, तो मैं बाद में फिर आपको बाकी अलवरों का वर्णन सुनाऊंगा। थोड़ा हम कीर्तन वगैरह करते हैं, तो फिर आप, आपका दिमाग जो है याद नहीं रहेगा।